السلام علیکم، یہ پارٹ ون ہے، حصہ اول، ناول بلیک ورڈ۔ یہ ناول نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ آواز قمر خلیل، پیشکش محمد اظہر، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ ون۔ چند باتیں۔ محترم قارئین، سلام مسنون، نیا ناول بلیک ورڈ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ ناول عام جاسوسی ناولوں سے ہٹ کر قطعی منفرد انداز میں تحریر کیا گیا ہے۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں خیر و شر کے دو مختلف نظام کام کرتے چلے آ رہے ہیں، اور خیر و شر کی آویزش ازل سے جاری ہے اور ابد تک جاری رہے گی۔ خیر کا نظام روشنی کا نظام ہے، جبکہ شر کا نظام اندھیرے کا نظام کہلاتا ہے۔ اندھیروں پر مشتمل اس نظام کو بلیک ورڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اس نظام کا سربراہ تو شیطان ہے، لیکن اس کی ذریات اور اس کی شیطانی قوتیں باقاعدہ ایک نظام کے تحت انسانوں کو گمراہ کرنے کی مسلسل کوششیں کرتی رہتی ہیں۔ یہ بلیک ورڈ کس قدر وسیع ہے اور کس انداز میں کام کرتی ہے، اس کا عام آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ عام آدمی ہر بات کو اپنی عقل اور اپنے حواس خمسہ کے پیمانوں کے ذریعے ناپتا ہے، اور جو خیال اور جو کام اس کی عقل اور اس کے حواس خمسہ کے پیمانوں پر پورا نہیں اترتا، وہ اسے تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیتا ہے۔ حالانکہ اس کائنات میں بے شمار ایسے نظام بھی کام کر رہے ہیں جن کا ادراک عام آدمی کو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ اس کی محدود عقل اور حواس خمسہ کے ان پیمانوں سے ماورا ہوتا ہے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ایسا کوئی نظام سرے سے موجود ہی نہیں ہوتا۔ بلیک ورلڈ بھی ایک ایسی دنیا ہے جو انسانی عقل اور انسانی حواس خمسہ سے ماورا ہوتی ہے۔ شیطان اور اس کی ذریات انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کرتے ہیں، اور کس کس قسم کی شیطانی قوتیں اس کام میں لگی ہوئی ہیں، اس کا ادراک واقعی عام انسانوں کے لیے ناممکن ہے۔ لیکن جو لوگ روشنی کے نظام سے وابستہ ہوتے ہیں، جن کا کام نیکی پھیلانا ہوتا ہے، اور جو انسانوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے ہمیشہ اس بلیک ورلڈ اور اس کی قوتوں سے برسر پیکار رہتے ہیں، انہیں اس کے بارے میں پوری طرح علم ہوتا ہے۔ اس ناول میں عمران کا ٹکراؤ اچانک بلیک ورلڈ کی ایک قوت سے ہو جاتا ہے، اور پھر وہ قوت اپنے مضمون مقصد کے لیے عمران کو ہی اعلیٰ کار بنانے کے لیے کام شروع کر دیتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ عمران جیسا شخص کسی طرح بھی بلیک ورلڈ کا اعلیٰ کار نہیں بن سکتا، بلکہ وہ الٹا بلیک ورلڈ سے پوری قوت سے ٹکرا جاتا ہے۔ اور پھر یہ ٹکراؤ اس قدر شدید، اس قدر ہولناک اور اس قدر خوفناک انداز میں سامنے آتا ہے کہ عمران کی زندگی کا ہر لمحہ قیامت کے لمحے میں تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے۔ عمران کی اس طرح بلیک ورلڈ سے ٹکراؤ میں روشنی کے نمائندے عمران کی بھرپور اور بر وقت مدد کرتے ہیں۔ اس طرح یہ ٹکراؤ اور بھی شدت اختیار کرتا چلا جاتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ قطعی منفرد انداز میں لکھا گیا یہ ناول قارئین کو ہر لحاظ سے پسند آئے گا، اور وہ حسب سابق مجھے اپنی آرا سے ضرور نوازیں گے۔ لیکن ناول کا مطالعہ شروع کرنے سے پہلے اپنے دو خط بھی ملاحظہ کر لیجئے۔ لاہور سے محترم افتخار احمد صاحب لکھتے ہیں، آپ کا ناول رینڈ رنگ بے حد پسند آیا ہے۔ منشیات کے خلاف آپ کا یہ ناول واقعی بے حد متاثر کن ثابت ہوا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ آئندہ بھی اس موضوع پر لکھتے رہیں گے۔ آپ سے ایک شکایت ضرور ہے کہ سیکرٹ سروس کے بیشتر ارکان اکثر فارغ رہتے ہیں، کیونکہ جب بھی کوئی مشن ہوتا ہے تو اس کے لیے سیکرٹ سروس کے ارکان میں سے जूलिया, तनवीर, सफदर और कैप्टन शकील ही काम करते हैं, लेकिन साइकिल सर्विस के बाकी अरकान तो फारिग ही रहते हैं। साइकिल सर्विस में शामिल इंतहाई आला सलाहियतों के हामिल अरकान को इस तरह फारिग रखना कौम मुल्क के साथ ज्यादती के मुतरादिफ है। इसलिए क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तमाम मेंबरान फारिग औकात में कोई न कोई काम ऐसा करते रहे जिनसे इनकी कारकर्दगी सामने आती रहे और मुल्क और कौम को भी इनकी सलाहियतों से फायदा पहुंचता रहे। मुझे यकीन है कि आप इस बात से जरूर इत्तफाक करेंगे। मोहतरम इफ्तिखार अहमद साहब, खत लिखने और नॉवेल पसंद करने का बेहद शुक्रिया। आपने अपने खत में जो तजवीज पेश की है, इस सिलसिले में आपको और दीगर कारीन को ये खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि साइकिल सर्विस के बेशतर अरकान ने अपने फारिग औकात को मुल्क और कौम के मफाद में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए मुल्क में फैली हुई समाजी बुराइयों के खिलाफ भरपूर अंदाज में जद्दोजहद करने का काम शुरू कर दिया है। इसलिए जल्द ही इस जद्दोजहद पर मबनी नॉवेल आप तक पहुंचने लग जाएंगे। इसके बाद यकीनन कारीन का ये गिला भी दूर हो जाएगा कि साइकिल सर्विस के अरकान फारिग औकात में काम क्यों नहीं करते। बस थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। मुझे यकीन है कि ये नॉवेल सब कारीन को पसंद आएंगे। शहर का नाम लिखे बगैर मोहतरम अली असद साहब लिखते हैं, आपका मुसलसल और लगातार कारी हूँ। आपका हर नॉवेल मैंने कई बार पढ़ा है। आपके नॉवेल मुझे इस कदर पसंद है कि तारीफ के लिए मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। मेरा ताल्लुक इंटेलिजेंस से है और आपके नावलों से मुझे बेहद रहनुमाई मिलती है। आपसे एक शिकायत अलबत्ता जरूर है कि आप कारीन के खतूत का जवाब संजीदगी से देने के बजाय मजाक में बात टाल देते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि आप संजीदगी से कारीन के खतूत का जवाब दिया करें। मोहतरम असद अली साहब, खत लिखने और नॉवेल पसंद करने के साथ लगातार और मुसलसल कारी होने का बेहद शुक्रिया। आपने वाकई कारीन के सिलसिले में नई इस्तेलाह मुतारिफ कराई है और ये लिख कर के आप मेरा ही हर नॉवेल बार बार पढ़ते हैं, इसका जवाब भी मुहैया कर दिया है। जहाँ तक खतूत के जवाब का ताल्लुक है तो इसका इन्हिसार तो खत में 10 बार पर होता है कि इसका जवाब कैसा हो। अब इजाजत दीजिए। वस्सलाम, आपका मुखलिस मजहर कलीम एम ए। सफदर ने कार होटल शराज के कंपाउंड गेट में मोड़ी और फिर इसे पार्किंग की तरफ ले गया। कार की साइड सीट पर एक अधेड़ उम्र आदमी बैठा हुआ था, लेकिन इसके चेहरे पर इस वक्त शदीद बेजारी के तासरात नुमाया थे। यूं लग रहा था जैसे वह मजबूरन कार में बैठा हुआ हो, वरना इसका बस चले तो एक लम्हे में कार से छलांग लगा दे। इसका सर आधे से ज्यादा गंजा था, लेकिन सर के अकबी हिस्से पर खासे घने और घुघियाले बाल थे। चेहरा क्लीन शेव था, लेकिन रुखसारों की हड्डियां कुछ जरूरत से ज्यादा ही उभरी हुई थी और इन हड्डियों के इस तरह उभरने और नाक की मखसूस बनावट से यूं महसूस हो रहा था कि इसका ताल्लुक किसी सहराई कबीले से है। इसके जिस्म पर नेवी ब्लू रंग का सूट था और इस सूट के ऊपर इसने सिया रंग की अबा पहन रखी थी जिसके किनारे सुनहरे थे। होटल की पार्किंग में कारों का इस कदर हुजूम था कि जैसे यहाँ रंग बिरंगी कारों का मेला लगा हुआ हो। सफदर ने कार एक खाली जगह पर रोकी। आइए प्रोफेसर, तशरीफ ले आइए। सफदर ने कार रोककर साइड सीट पर बैठे हुए आदमी से मुखातिब होकर कहा और खुद दरवाजा खोलकर नीचे उतर गया। प्रोफेसर भी खामोशी से कार का दरवाजा खोलकर नीचे उतरा, लेकिन इसके चेहरे पर बेजारी के तासरात कुछ और ज्यादा बढ़ गए थे। इसका अंदाज बिल्कुल ऐसा था जैसे किसी नालायक बच्चे को जबरदस्ती स्कूल ले जाया जा रहा हो। होटल का वसी हाल तबका अमर उसे खिंचा खचा खच भरा हुआ था और इन्हें दूर एक कोने में बैठने की जगह मिली और सफदर ने वेटर को लेमन जूस लाने का ऑर्डर दे दिया। अब आप अपना मुकम्मल तारुफ करा दीजिए, प्रोफेसर, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। मुकम्मल तारुफ क्या मतलब? मेरा नाम प्रोफेसर रजा है और मेरा ताल्लुक मिस्र से है, क्या इतना तारुफ मुकम्मल तारुफ नहीं है? प्रोफेसर ने इसी तरह बेजार लहजे में जवाब देते हुए कहा। इसका अंदाज ऐसा था जैसे जबरन बोल रहा हो। क्या आप मिस्र की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं? सफदर ने कहा। ओह नहीं, मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ, मिस्र के कदीम नवाद रात पर रिसर्च करता हूँ, खास तौर पर मेरा शोबा जेवरात है, प्रोफेसर ने इसी तरह बेजार लहजे में कहा। यानी आप ये रिसर्च करते हैं कि कदीम मिस्री औरतें किस किस्म के जेवरात इस्तेमाल करती हैं? सफदर ने दिलचस्पी लेते हुए कहा। इसी लम्हे वेटर ने लेमन जूस के दो गिलास लाकर इनके सामने रख दिए। ओह नहीं मिस्टर सफदर सईद, मुझे ना ही औरतों से कोई दिलचस्पी है और ना इनके जेवरात से। मेरी रिसर्च का मौजू मुकद्दस जेवरात है, ऐसे जेवरात जिन्हें पुजारी पहना करते थे और जिनको वो जादू में इस्तेमाल करते थे, प्रोफेसर ने जवाब दिया तो सफदर बेख्तियार चौंक पड़ा। इसके चेहरे पर मजीद दिलचस्पी के तासर उभरे। जादू में जेवरात का इस्तेमाल, क्या मतलब? मैं समझा नहीं, सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा। आप समझ ही नहीं सकते, इसलिए ख्वाह मख्वा जहन पर जोर मत दीजिए, प्रोफेसर ने बेजार से लहजे में जवाब दिया और सफदर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। पाकिशिया में आपकी तशरीफ आवरी का क्या मकसद है? यहाँ तो ऐसे मुकद्दस जेवरात नहीं पाए जाते, सफदर ने लेमन जूस सिप करते हुए पूछा। यहाँ भी कदीम दौर में ऐसे जेवरात इस्तेमाल किए जाते हैं, मैं इनका मुताला करने आया था लेकिन यहाँ किसी भी अजायब घर में मुझे ऐसे जेवरात नजर ही नहीं आए, प्रोफेसर ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। आपने यहाँ कौन कौन सी अजायब घर देखे हैं? सफदर ने कहा। यहाँ पूरे पाकिशिया में सिर्फ 8 अजायब घर हैं और मैंने 8 अजायब घर देख लिए हैं। वहाँ के मुंतजमीन को इन जेवरात के बारे में सिरे से इल्म ही नहीं है, हालांकि तारीखी कुतुब में ऐसे जेवरात के हवाले वाजे तौर पर मिलते हैं, प्रोफेसर ने जवाब दिया। हो सकता है ऐसे जेवरात नजी अजायब घरों में महफूज हों, सफदर ने कहा तो प्रोफेसर बेख्तियार चौंक पड़ा। नजी अजायब घरों में क्या मतलब? प्रोफेसर के चेहरे पर इस बार हैरत थी। यहाँ लोगों के जाती अजायब घर भी हैं, प्रोफेसर रजा, जिस तरह जाती लाइब्रेरियां होती हैं, सफदर ने जवाब दिया। ओहो, क्या आप ऐसे लोगों के बारे में जानते हैं? मिस्र में तो ऐसे अजायब घर ममनू है, प्रोफेसर के चेहरे पर इस बार दिलचस्पी के तासर नमूदार हो गए थे। एक साहब को जानता हूँ, इनका नाम सरदार अकमल हुसैन है, बहुत बड़े जागीरदार हैं, इनका जाती अजायब घर है लेकिन वो किसी से मिलते ही नहीं, मर्दम बेजार किस्म के शख्स हैं, सफदर ने जवाब दिया। ओहो, आप मुझे इनका पता बता दें, मैं मिल लूंगा हर सूरत में, प्रोफेसर की जिससे दिलचस्पी और बढ़ गई। अगर आप इस कदर दिलचस्पी ले रहे हैं तो मैं आपके साथ चलता हूँ, मेरे इनसे खानदानी ताल्लुकात हैं और वो मेरा लिहाज भी करते हैं, शायद मेरी वजह से आपसे मुलाकात पर रजामंद हो जाएं, वरना अगर इन्हें जरा भी शक पड़ जाए कि मुलाकाती इनके अजायब घर में दिलचस्पी ले रहा है तो वो साफ इनकार कर देते हैं, वो अजायब घर के बारे में बेहद हसास हैं, सफदर ने जवाब देते हुए कहा। ओह मैं आपका जाती तौर पर मशकूर होऊंगा कि आपसे इस तरह मुलाकात हो जाने को अब मैं अपनी खुशकिस्मती समझ रहा हूँ। वरना सच्ची बात यह है कि अब तक मैं यही सोच रहा था कि आपसे मुलाकात ने मेरा वक्त जाया किया है, प्रोफेसर ने कहा तो सफदर बेख्तियार हंस दिया। आपकी यही बात तो मुझे पसंद आई है प्रोफेसर रज़ा के आप में वो मुनाफिकत नहीं है जो आज के दौर का खासा बन चुकी है। आप जो कुछ महसूस करते हैं इसका खुले तौर पर इजहार भी कर देते हैं, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। दरअसल मुझे इन होटलों से वहशत होती है और आप मुझे जबरन यहाँ ले आए हैं, प्रोफेसर ने कहा तो सफदर हंस पड़ा। मैं तो ये समझा था कि आप अकेले रहने की वजह से तन्हाई का शिकार हो रहे हैं। बहरहाल आइए फिर पहले सरदार अकमल हुसैन से मिल लेते हैं, सफदर ने कहा और वेटर को बुलाकर इसने एक नोट दिया और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। अरे वो इमरान साहब, और यहाँ अचानक सफदर ने मेन गेट की तरफ देखते हुए कहा। कौन किसकी बात कर रहे हो, प्रोफेसर ने चौंक कर गेट की तरफ देखते हुए कहा। ओह वो आप वाकई खुशकिस्मत है प्रोफेसर, अली इमरान साहब का तो मुझे ख्याल ही ना रहा था, इनका अजायब घर तो यहाँ का सबसे बड़ा अजायब घर है, सफदर ने शरारत भरे लहजे में कहा। इसके साथ ही इसने हाथ हिलाकर इमरान को अपनी तरफ मुतवज्जा किया जो हाल में दाखिल होकर इस तरह इधर उधर देख रहा था जिसे से खाली निश्त की तलाश हो। क्या आप दुरुस्त कह रहे हैं, प्रोफेसर रजा ने हैरत भरे लहजे में कहा। बिल्कुल, अगर आप अली इमरान साहब को रजामंद कर ले तो बस समझे कि आप खुशकिस्मती के दौर में दाखिल हो गए हैं, सफदर ने कहा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू या अहलियान होटल शेराज, इमरान ने करीब आकर खालिस अरबी लहजे में सलाम करते हुए कहा। इमरान साहब ये प्रोफेसर रजा हैं, इनका ताल्लुक मिस्र से है, जिस बिल्डिंग में आजकल मेरा फ्लैट है ये भी वहाँ रहते हैं। आज मुझे लिफ्ट बॉय ने बताया कि प्रोफेसर रजा गुज़श्ता 3 दिनों से अपने फ्लैट से बाहर नहीं आए, तो मैं इनसे मिलने गया और फिर इन्हें जबरदस्ती यहाँ ले आया। ये रिसर्च स्कॉलर हैं और मिस्र के इन कदीम जेवरात पर रिसर्च कर रहे हैं जो पुजारी पहनते थे और जिनकी मदद से वो जादू किया करते थे। यहाँ पाकिस्तान में ये सब अजायब घर देख चुके हैं लेकिन यहाँ इन्हें अपने मतलब के जेवरात नजर नहीं आए। मैं इन्हें सरदार अकमल हुसैन का अजायब घर दिखाने ले जा रहा था कि आप आ गए और मैंने इन्हें बताया कि आपसे मुलाकात इनके लिए बेहद खुशकिस्मत साबित होगी क्योंकि आपका जाती अजायब घर यहाँ का सबसे बड़ा अजायब घर है और यकीनन इस अजायब घर में ऐसे जेवरात भी होंगे जिनकी तलाश ही प्रोफेसर रजा को है। सफदर ने जल्दी जल्दी प्रोफेसर रजा से मुलाकात से लेकर अब तक की सारी बात बता दी क्योंकि इसे खतरा था कि कहीं इमरान की जबान किसी और तरफ रवा हो गई तो फिर इसका सारा प्लान नाकाम हो जाएगा। वो दरअसल प्रोफेसर रजा को इमरान के जिम्मे डालकर खुद तमाशा देखना चाहता था और प्रोफेसर रजा इनका नाम अली इमरान है, ये MSC DSC ऑप्शन है पाकिस्तान के सेंटर इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल और बहुत बड़े जागीरदार सर अब्दुल रहमान के इकलौते साहबजादे हैं। साइंस में डॉक्टरेट करने के बावजूद इन्होंने अजीब गैर साइंसी पेशे अख्तियार किया हुआ है कि दुनिया भर की यूनिवर्सिटियों में काम करने वाले रिसर्च स्कॉलर्स को इनकी मतलूबा चीजें सप्लाई करते हैं, जड़ी बूटियों से लेकर जदीद तरीन साइंसी ढांचे सब कुछ सप्लाई करते हैं। सफदर पूरी तरह शरारत पर तुला हुआ था और सफदर ने जिस अंदाज में तारुफ कराया था इससे इमरान समझ गया कि सफदर क्या चाहता है। क्या आप वाकई डॉक्टर ऑफ साइंस हैं और वो भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, आप शक्ल से मुझे कतई अहमक से नौजवान लगते हैं, प्रोफेसर रजा ने कहा और सफदर बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा, जबकि इमरान की आंखें सर्च लाइटों के अंदाज में हलकों के अंदर घूमने लगी। कमाल है जनाब प्रोफेसर साहब, आपने कहीं क्याफा शनासी में तो डॉक्टरियत नहीं कर रखा। हैरत है, आज पहली बार किसी ने सिर्फ मेरी शक्ल देखकर मुझे जीनियस कहा है, वरना आम लोग तो मुझे बेवकूफ ही कहते रहते हैं। शुक्रिया प्रोफेसर रजा, इस सर्टिफिकेट का शुक्रिया, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। जीनियस क्या मतलब, मैंने आपको अहमक कहा है, प्रोफेसर रजा ने इंतहाई हैरान होते हुए कहा। कमाल है, आप अच्छे रिसर्च स्कॉलर हैं, आपको इतनी सादा सी बात का भी इल्म नहीं, या फिर आप तजाहिल आरफाना से काम ले रहे हैं। बेपना अकलमंदी और हमाकत की सरहदें मिलती हैं, इसलिए बेपना अकलमंद यानी जीनियस को अहमक भी कहा जाता है, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओह तो ये बात है, आई एम सॉरी, मैंने आपको इन मायनों में अहमक नहीं कहा था, प्रोफेसर ने मासूम से लहजे में कहा और इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। चलिए इन मायनों में आप अपने आप को अहमक समझ लें, मुझे कोई एतराज नहीं है, इमरान ने कहा और सफदर बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। ओ इसका तारीफ का शुक्रिया, आप ये फरमाएं क्या वाकई आपका जाती म्यूजियम है, प्रोफेसर रजा ने ऐसे लहजे में कहा जिसे इमरान ने वाकई इसकी तारीफ की हो। बिल्कुल है, लेकिन इसे देखने के लिए टिकट है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ अच्छा ठीक है, आप फरमाएं कितना टिकट है, कहाँ से मिलता है, मैं ये म्यूजियम जरूर देखूंगा, प्रोफेसर ने खुश होते हुए कहा। इसी लम्हे वेटर करीब आया तो सफदर ने इसे इमरान के लिए लेमन जूस लाने का ऑर्डर दे दिया। म्यूजियम मेरा है, इसलिए जाहिर है टिकट भी मुझसे ही मिल सकता है, लेकिन चूंकि ये यहाँ का सबसे बड़ा म्यूजियम है, इसलिए इसका टिकट भी भारी मालियत का है, लेकिन आप यहाँ मेहमान हैं, इसलिए आपसे खुसूसी रियायत हो सकती है, आप सिर्फ $1,00,000 दे दें, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो प्रोफेसर की आंखें हैरत की शिद्दत से हल्कों से बाहर निकल आईं। क्या क्या बताया है आपने, $1,00,000 सिर्फ म्यूजियम देखने के, प्रोफेसर की हालत वाकई खराब हो गई थी। कमाल है, इसका मतलब है कि आपने कभी कोई बड़ा म्यूजियम देखा ही नहीं, जनाब इस म्यूजियम के लिए तो बड़े बड़े लार्डेज अपने जायदादें फरोख कर देते हैं, $50,00,000 तो इसके एक शोबे का टिकट है, इमरान ने कहा और प्रोफेसर बेचारे की आंखें और ज्यादा बाहर आ गईं। ओ इतना बड़ा म्यूजियम, मगर मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं तो ज्यादा से ज्यादा आपको $100 दे सकता हूँ, प्रोफेसर ने इंतहाई बेचारगी भरे लहजे में कहा। इसके चेहरे पर यकलख्त शदीद बेबसी और मायूसी के तार साथ उभर आए थे। $100 में आप इस म्यूजियम का गेट भी नहीं देख सकते, प्रोफेसर रजा, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा फिर मैं क्या करूं, कहां से $1,00,000 ले आऊं? ओ ठीक है, वहां मिस्र में मेरी एक बड़ी कोठी है, मेरे मामू ने मुझे दी थी, ठीक है मैं जाकर इसे फरोख कर देता हूं, $1,00,000 यकीनन मिल जाएंगे, प्रोफेसर ने खुश होते हुए कहा और इमरान इसकी सादा लूही पर बेख्तियार हंस पड़ा। अब मुझे यकीन आ गया है कि आप वाकई प्रोफेसर हैं, मतलब है आप सिर्फ इल्म की दुनिया में गर्क रहते हैं, इसलिए आपके लिए खुशखबरी के प्रोफेसर से म्यूजिक देखने के लिए कोई टिकट नहीं लिया जाता, इमरान ने वेटर का लाया हुआ लेमन जूस सिप करते हुए मुस्कुराकर कहा। तो प्रोफेसर का चेहरा इमरान की बात सुनकर गुलाब के फूल की तरह खिल उठा। ओहो, फिर तो वाकई में इंतहाई खुशकिस्मत हूँ। प्रोफेसर की खुशी दीदनी थी और इमरान सफदर की तरफ देखकर मायने खैज अंदाज में हंस पड़ा। इमरान साहब, आपके आने से पहले मैं प्रोफेसर साहब को बता रहा था कि प्रोफेसर साहब वाकई अच्छे आदमी हैं, मुनाफिकत नहीं करते। जो एहसास इनके होते हैं, इनका वो खिल खुल कर इजहार कर देते हैं, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा और इमरान ने इस्बात में सर हिला दिया। हाँ, इस जमाने में ऐसे लोग नायाब हैं। वैसे प्रोफेसर रजा, क्या आप वाकई रमीज पर रिसर्च कर रहे हैं? इमरान ने कहा तो प्रोफेसर बेख्तियार एक झटके से उठ खड़ा हुआ। वो इस तरह इमरान को देख रहा था जैसे इमरान के सर पर अचानक सींग निकल आए हो। क्या क्या आप कैसे रमीज के बारे में जानते हैं? इसके बारे में तो मिस्रियात के बड़े बड़े माहिरीन भी कुछ नहीं जानते। वो तो ये कदीम तरीन नाम भी नहीं जानते और आपने ये नाम ले लिया। ले क्या मतलब? क्या क्या आप प्रोफेसर की हालत वाकई देखने वाली थी। अरे, इसमें इस कदर हैरान होने की क्या बात है। सब जानते हैं कि कदीम मिस्री माबूदों में पुजारी मखसूस किस्म के जेवरात जादू के लिए इस्तेमाल करते थे और इन्हें रमीज कहा जाता था। ये तो बड़ी आम सी बात है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ नहीं जनाब, ये आम सी बात नहीं है, ये तो इंतहाई खास बात है। रमीज का लफ्ज सिर्फ इस दौर के पुजारी इस्तेमाल करते थे और ये लफ्ज वो सिर्फ आपस में इस्तेमाल करते थे। इस लफ्ज को मुकद्दस समझा जाता था और इसकी इस तरह हिफाजत की जाती थी कि पुजारियों के अलावा और किसी के कानों तक ये लफ्ज ना पहुंच सके। सिर्फ एक कुतबा ऐसा मिला है जिसमें ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया है और इस कुतबे को भी अच्छे अच्छे माहिर पूरी तरह नहीं पढ़ सके। वो रमीज को किसी पुजारी का नाम ही समझते हैं। ये तो सिर्फ मेरे उस्ताद डॉक्टर रिजवान को इल्म था और इनके बाद मुझे। प्रोफेसर की हैरत बशर्ते कायम थी। फिर तो यकीनन आपको इल्म होगा कि प्रोफेसर रिजवान ने रमीज पर एक पूरा तहकीकाती मजमून लिखा था, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ लिखा था, मगर वो कहीं शाया तो नहीं हुआ। इसका मसवदा तो अभी तक मेरे पास है। डॉक्टर रिजवान के कॉन्फिडेंशियल बॉक्स से इस दस्तयाब हुआ है और ये बॉक्स वो अपने वफात से पहले खास तौर पर मेरे हवाले कर गए थे, प्रोफेसर रजा ने कहा। आपने वो मसवदा पढ़ा है? इमरान ने संजीदा लहजे में पूछा। जी हाँ, कई बार पढ़ा है। इस मसवदे को पढ़ने के बाद ही तो मैं इस काबिल हुआ हूँ कि रमीज पर रिसर्च कर सकूँ, प्रोफेसर रजा ने जवाब दिया। इस मसवदे के आखिर में सुर्ख स्याही से एक छोटा सा नोट भी दर्ज है जिसमें ये लिखा हुआ है कि न सिर्फ मिस्र में बल्कि एशिया में भी रमीज को इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ एशिया में रमीज को जांजर कहा जाता है और जांजर पर पाकिस्तान के एक रिसर्च स्कॉलर डॉक्टर मतलूब हुसैन ने तहकीक भी की है। लेकिन इससे पहले कि डॉक्टर मतलूब हुसैन जांजर पर अपनी तहकीक को तहरीर करके शाया करा सकते, एक एक्सीडेंट में वो हलाक हो गए और इस तरह ये अहम रिसर्च दुनिया की निगाहों से ओझल रही, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। अब प्रोफेसर रजा के साथ साथ सफदर के चेहरे पर भी शदीद हैरत के साथ साथ उभर आए थे। हाँ हाँ बिल्कुल, नोट मौजूद है, मैंने पढ़ा है, बल्कि अपनी वफात से पहले डॉक्टर रिजवान ने मुझे कहा था कि वो मेरे साथ जल्द ही पाकिस्तान जाएंगे और रमेश पर मजीद तहकीकात करेंगे, लेकिन फिर अचानक वो वफात पा गए और मैं इसीलिए तो यहाँ आया हूँ। मुझे यकीन था कि रमेश यहाँ पाकिशिया के किसी अजायब घर में मौजूद होगा, लेकिन यहाँ के मैंने सब अजायब घर देख डाले हैं, लेकिन मुझे रमेश कहीं भी नजर नहीं आए। लेकिन आपको कैसे इल्म है? आप कहीं किसी कदीम पुजारी का दूसरा जन्म तो नहीं है? मम मेरा मतलब है कि किसी कदीम पुजारी की रूह वगैरह तो आपके जिस्म में नहीं आ गई, प्रोफेसर रजा ने कहा और इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। हम मुसलमान हैं प्रोफेसर रजा, और मुसलमान इस किस्म के लघुवियात पर यकीन नहीं रखते। ये नॉवेल ब्लैक वर्ल्ड का बकिया हिस्सा पार्ट 2 में समाप्त फरमाएं।